पहले अध्याय में इस पुस्तक में हरि नाम की महिमा के बारे में बताया गया है और उसकी पहचान के बारे में बताया गया है, आइडेंटिटी ऑफ द होली नेम अध्याय का शीर्षक है। और पिछली बार हम लोग नाम की महिमा का वर्णन सुन रहे थे और हमने ये भी सुना किस तरह से नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो आज हम लोग इसी व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। इसमें तीन नामों के बारे में बताया गया है, गौण नाम, मुख्य नाम और माधुर्य नाम। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने इसकी चर्चा की है हरिनाम चिंतामणि में। जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, ये आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा हो या फिर नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम है, कोई भी पुस्तक लिखी जा रही है लिखी गई है, उसका जो मूल आधार है वो है हरिनाम चिंतामणि। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो पुस्तक लिखी हरिनाम चिंतामणि, उसी को आधार बनाते हुए इन सब पुस्तकों की रचना की गई है। तो भक्तिवन ठाकुर की जो पुस्तक है हरिनाम चिंतामणि बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है, अब तो हिंदी में भी उपलब्ध है। इसको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए जिससे हम लोग नाम की महिमा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद ने भी जो वर्णन दिया है अपनी पुस्तकों में वो भी हरिनाम चिंतामणि ही को आधार बनाते हुए दिया है। और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम जिसमें नाम की महिमा का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो गौण नाम, मुख्य नाम और माधुर्य नाम। तो गौण नाम क्या है और मुख्य नाम क्या है और माधुर्य नाम क्या है? गौण नाम, मुख्य नाम, मुख्य नाम का मतलब होता है प्राइमरी नेम और गौण नाम का मतलब है सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम यानी कि जो कि इस जगत से संबंधित है, यानी कि इन नामों की शुरुआत इस जगत में हुई है, इस भौतिक जगत में हुई है, भौतिक ब्रह्मांड में हुई है। आप सृष्टिकर्ता हैं, आप जगतपति हैं, है ना, परमात्मा। भगवान के धाम में परमात्मा का कोई रोल नहीं है, वहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साक्षात भगवान वहां पर है, परमात्मा की क्या आवश्यकता? जब साक्षात भगवान ही वहां मौजूद है तो परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की आवश्यकता इस संसार में होती है क्योंकि परमात्मा बद्ध जीवात्माओं के साथ भ्रमण करते हैं, चर और अचर जीव में अपने को आप अपने आप को स्थापित करते हैं और इस तरह से उस जीव का इंतजार करते हैं कि कब वो हरि नाम लेगा, भगवान की शरण ग्रहण करेगा। भगवान से कैसे कब वो जीव संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। अभी हमारा संबंध क्या है? इस देह से संबंध है, इस भौतिक शरीर से हमारा संबंध है। आसक्ति हमारी इस शरीर से है और ये आसक्ति बहुत ही ज्यादा गहरी होती है, बहुत ही ज्यादा डीप होती है। ये अटैचमेंट होता है जो सबसे ज्यादा, वो हमें अपने देह से होता है और स्थूल शरीर से भी होता है और सूक्ष्म शरीर से भी होता है। सूक्ष्म शरीर से जो आसक्ति है और ज्यादा गहरी होती है, तो उसको आसक्ति को काटना बहुत कठिन होता है, है ना। बहुत गहरे संस्कार हमारे चित्त में हैं, पिछले जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार बहुत ज्यादा डीप रूटेड हैं और इन संस्कारों को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। और यही संस्कार हमें सक्रिय बनाते हैं, हमें नाना प्रकार के कर्म करने में मजबूर करते हैं। अच्छे संस्कार अच्छे कर्म कराते हैं, बुरे संस्कार बुरे कर्म कराते हैं और इस तरह से हमें नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश करना पड़ता है और कभी भी हम लोग देह से छुटकारा नहीं पाते। क्या कारण है? आसक्ति के कारण। तो ये आसक्ति जब हम लोग हरि नाम के प्रति जागृत कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे देह से आसक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसी देह में रहते हुए हम लोग देह से अनासक्त हो जाएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब का जो मूल उद्देश्य यही है कि हम अब कैसे अपना संबंध स्थापित करें भगवान श्री कृष्ण से, उनकी अंतरंगा शक्ति से, और फिर उस आधार पर उनकी सेवा करें और इस सेवा के आधार पर हम लोग प्रयोजन प्राप्त करें, प्रेम प्राप्त करें और भगवान के धाम में प्रवेश करें। गोलोक एवं प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से ये नाम संकीर्तन प्रकट हुआ है, प्रेम नाम संकीर्तन प्रकट हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रेम नाम दिया है, वैकुंठ नाम नहीं दिया है केवल। हाँ, वैकुंठ नाम आपको वैकुंठ ले आता है, लेकिन ये गोलोक का नाम आपको गोलोक ले जाएगा। इसलिए गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, जिसको प्रेम नाम संकीर्तन कहा गया है, क्योंकि इससे पहले जो कलयुग आए थे उसमें भगवान गौर नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि हमें वैकुंठ नाम प्रदान करते हैं, और उन नामों के द्वारा हम वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है, इसके द्वारा हम लोग ब्रज का प्रेम प्राप्त करते हैं। ये नाम हमें भगवान के धाम ले जा सकता है, गोलोक धाम में प्रवेश करा सकता है। और इसलिए संबंध ज्ञान स्थापित होता है। सबसे पहले हमें पहचान जो बढ़ानी है, संबंध स्थापित करना है, नामों के साथ संबंध स्थापित करना है। पहली हमारी मुलाकात किससे होनी चाहिए? कृष्ण के नामों से होनी चाहिए, है ना। जैसे ही हम देखते हैं कोई भक्त आता है हमारी संस्था में, हम उसको जैसे ही माला पकड़ाते हैं तो हम लोग उसको भक्त के रूप में देखने लग जाते हैं। फिर जैसे ही कोई व्यक्ति बीट बैग लटकाता है, हम बोलते हैं हमारे भक्त प्रभु जी हैं, काफी दिन से प्रोग्राम में आ रहे हैं, काफी दिन से मंदिर में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप माला निकाल दो और माला करना छोड़ दो, तो फिर अपने आप ही आपका संबंध टूट जाता है, है ना। तो हमारा जो संबंध जुड़ा है इस संस्था से या कृष्ण से या वैष्णव से, उसका आधार ही क्या है? हरिनाम है। नाम बिना किछु नाही कुआर, 14 भवन माजे, ठाकुर भक्तिनों ने कहा है कि 14 भवन में और कोई आश्रय है ही नहीं नाम के अलावा। और अगर हम नाम करना छोड़ दे, लेना छोड़ देते हैं, तो हमारा संबंध वैष्णव से टूट जाता है, गुरु से संबंध छूट जाता है। क्योंकि ये जो नाम है, ये मंत्र है, ये गुरु के ही प्रतिनिधि हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये गुरु के। इसलिए इन नामों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण बड़ी सावधानी से हमें करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि ये नाम जो है गुरु के द्वारा दिया गया है, और इन नाम में क्या है? प्रेम धम छुपा हुआ है, हमारा स्वरूप छुपा हुआ है, भगवान का स्वरूप छुपा हुआ है, और हमारा संबंध छुपा हुआ है, हमारी सेवाएं छुपी हुई हैं, सब छुपी हुई हैं, और जब दिखाई पड़ेंगे तो फिर छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ प्रकट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। हमारा मींस जो है प्रैक्टिस का, वो क्या है? हरि नाम है। और गोल क्या है? ये वही हरि नाम है। जैसे श्रीवास आंगन में जब महाप्रभु गौर लीला कर रहे थे, महाप्रभु लीला कर रहे थे, गौर लीला जब चल रही थी नवदीप में, श्रीवास आंगन में संकीर्तन का उद्घाटन हुआ श्रीवास आंगन में। और ये जो श्रीवास आंगन में संकीर्तन का उद्घाटन होता था, उद्घाटन जब हुआ तो दिन रात ये संकीर्तन चल रहा था, है ना, रुकता ही नहीं था, ये हरि नाम चलता रहता था। और रात को जब चलता था तो आसपास के पड़ोसी परेशान हो जाते थे, द्वेष करते जो थे वो लोग नाना प्रकार की बातें करते थे श्रीवास पंडित के बारे में। वो कहते थे कि ये सब शायद पिए हुए हैं और शायद पीकर चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, या तो उनको कुछ खाने को नहीं मिला है लगता है, भूखे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार द्वेष के कारण नाना प्रकार के कथन करते थे, और कहते थे उनको डर भी लगता था कि कहीं चांद काजी जो है अपने सैनिक ना भेज दे यहां पर, इस शिवास के कारण हम लोगों को कितना खर्च उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार शिवास पंडित से बहुत लोग द्वेष करते थे, नाना प्रकार की बातें करते थे, वो इन संकीर्तन को नहीं समझ पाए। एक बार एक ब्राह्मण वो शिवास पंडित के घर के बाहर आया, और शिवास पंडित खूब उल्लास निभा रहा। उसने कहा कि मैं महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ अंदर आके। तो श्रीवास पंडित ने कहा नहीं नहीं, महाप्रभु ने मना किया है, आप अंदर नहीं आ सकते, केवल जो उनके अंतरंग पार्षद हैं वो इस संकीर्तन का भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो संकीर्तन चल रहा था अंदर वो भावमय कीर्तन चल रहा था, तो सबके लिए नहीं थी वहां पर एंट्री, कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज के लिए। अंतरंग पार्षद, एक होते बहिरंग पार्षद और एक होते अंतरंग पार्षद, है ना। सामान्य लोग जो संकीर्तन करते हैं वो एक्सटर्नल डिवोटीज होते हैं, और भगवान की जो अंतरंग लीलाओं में रहकर संकीर्तन करते हैं वो इंटरनल डिवोटीज होते हैं, कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज। वहां पर प्रवेश सबको नहीं मिलता है, वहां पर पर्दा लगा रहता है, इमेच्योर डिवोटीज को वहां पर एंटर नहीं करने देते, क्योंकि वो देखकर क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, अपराध कर बैठेंगे। तो ब्राह्मण ये देखना चाहता था और ब्राह्मण ने कहा मुझे देखने दीजिए, आपसे मेरी प्रार्थना है। तो बहुत गिड़गिड़ाया वो श्रीवास पंडित के चरणों में, ठीक है आप एक काम करो, छेद है, छेद से देखते रहो। वो ब्राह्मण छेद से देखने लगा, कुछ देर के लिए देखा तो महाप्रभु को लगा कोई आसपास खड़ा है बाहर का आदमी, तो महाप्रभु ने एकदम संकीर्तन रोक दिया, कौन खड़ा है यहां पर, कोई बाहर से आया यहां पर, हमारे भक्तों में से तो कोई नहीं है, कोई बाहर से देख रहा है क्या, श्रीवास कौन है ये, कौन आया यहां पर, कौन देख रहा है यहां पर संकीर्तन को। तो श्रीवास पंडित ने बताया कि एक ब्राह्मण है, वो बाहर से देखना चाह रहा था, उसे बहुत मुझे कहा, मैंने मना भी किया लेकिन वो माना नहीं, तो मैंने कहा ठीक है बाहर उस छेद से देख लो, तो बुलाओ उस ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को बुलाया, तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूध पीकर जीवन निर्वाह करता हूं, बहुत तपस्या करता हूं, है ना, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं संकीर्तन को देखूं, आपके नृत्य को देखूं, संकीर्तन को देखूं। महाप्रभु ने कहा दूध पीकर कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त किया आज तक कोई, केवल दूध पीने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, दूध पीकर जीवन निर्वाह करते हैं। तो ब्राह्मण समझ गया कि केवल शुष्क तपस्या से कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, इसके लिए नम्रता की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण जैसी नम्रता प्रकट किया उसने और समर्पित भावना प्रकट की उसने, तो महाप्रभु अति प्रसन्न हुए और नम्रता के कारण उस ब्राह्मण को भी प्रवेश प्राप्त हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा निश्चित रूप से कोई आकर्षण नहीं है हरिनाम में, नाम में कोई रुचि नहीं है और ना ही हम लीलाओं का कोई रसास्वादन कर रहे हैं, ना नाम लेते हुए हमें कोई लीला की स्फूर्ति भी नहीं हो रही है ना, कि नहीं, बल्कि विषयों का चिंतन होता है, नाम लेते हैं अपने अनर्थों का दर्शन करते हैं, लीलाओं का दर्शन तो नहीं होता है, है ना, बार बार नाम ले लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, है ना। निर्जल एकादशी के दिन हम लोग 64 माला करेंगे, एक बंद गुफा में दरवाजा बंद करके हम लोग नाम लेना शुरू करते हैं, भाई एक बार नींद आती है, धक्के खाते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, फिर जप करते हैं, फिर सोते हैं, फिर जप करते हैं, संघर्ष करते हैं। मनसृष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान भी गीता में कह रहे हैं, ये जीव जितने भी सनातन अंश है मेरे, और ये इस क्या कर रहे हैं, संसार में संघर्ष कर रहे हैं हरि नाम लेते हुए। प्राकृत भक्तों के लिए भी कहा है भगवान कृष्ण ने, एक तरह से देखा जाए ये प्राकृत भक्त संसार में संघर्ष कर रहे हैं मेरा नाम लेते हुए। मनस अष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, दे आर स्ट्रगलिंग विद द सेंसेस विच इंक्लूड्स द माइंड, सो ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र, एक्चुअली दे आर स्ट्रगलिंग विद द सेंसेस एंड ऑल्सो विद द माइंड। तो मन जो है वो हमें कष्ट में डाल रहा है, और धीरे धीरे हम एहसास करते हैं कि हम भगवान के अवतार नहीं है, हम भगवान के अवतार नहीं है, हम बद्ध जीव हैं। हरि नाम हमें एहसास दिलाता है ना, हम स्वामी नहीं है, हम प्रभु नहीं है, हम तो दास भी नहीं बन पा रहे हैं, हमसे नाम भी नहीं लिया जा रहा है कृष्ण का। दुर्दैव में दृश्यमी हा जनी नानुरागा, कितना बड़ा दुर्भाग्य देखिए कलयुग में हरि नाम भी नहीं लिया जाता है, है ना, कितने बड़े विचित्र की बात, विचित्र बात है। सत्युग की बात क्या और त्रेता युग की बात क्या, द्वापर युग की बात क्या, अन्य युगों में कितना तपस्या करना पड़ता था भगवत प्राप्ति के लिए, कलयुग में इतना सरल साधन दिया गया है फिर भी इतना कठिन हो रहा है हमारे लिए हरि नाम लेना। हरि नाम के लिए हम क्लासेस कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, आर्ट ऑफ चैंटिंग प्रभु महाराज को किताब लिखनी पड़ी, एक 16 शब्द का महामंत्र, उसके लिए इतनी मोटी पुस्तक नहीं। वैसे तो बहुत रहस्य है इस हरिनाम में, लेकिन क्योंकि हम लोगों के अंदर कोई आकर्षण नहीं है, तो इस प्रकार हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती आचार्य लोग, गुरुजन, वैष्णव जितने भक्त हैं, वो सब हमारी सहायता करते हैं कि बार बार हरिनाम के बारे में सुनकर हम लोग हरिनाम से संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। तो ये तो खैर भावमय कीर्तन जो था उसमें भाग लेने का सबको अवसर तो नहीं प्राप्त होता था, और ये जो भावमय संकीर्तन था शुद्ध नाम लिया जा रहा था श्रीवास पंडित के घर पे, प्रत्येक भक्त वहां पे शुद्ध नाम ले रहे थे, रसास्वादन कर रहे थे, है ना, महापुरु के घर में रहकर भावमय कीर्तन चल रहा। तो इस प्रकार ये कलयुग का विशेष कलयुग में विशेष योगदान है चैतन्य महाप्रभु का। अनर्पित चरिम चिराद करुणया अवतीर्ण कलौ उन्नत उज्जवल रसाम स भक्ति श्रियम। उन्नत उज्जवल रस ब्रज का जो प्रेम है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में कैसे बांटा, नाम संकीर्तन के द्वारा। तो नाम संकीर्तन वो साधन है जो साध्य की प्राप्ति कराएगा आपको। सुभाष आंगन क्या है? सुभाष आंगन योग पीठ में जो रासस्थली है उसे अभिन्न है। रासस्थली में रासलीला होती है, शिवा सागर में नाम संकीर्तन होता है कि नहीं? तो नाम संकीर्तन रासलीला से अभिन्न है, तो जो नाम संकीर्तन जितना अधिक नाम संकीर्तन में भाग लेगा वो निश्चित रूप से रासलीला में प्रवेश करेगा, है ना। गौर लीला से ब्रज लीला में प्रवेश करना बहुत ही सरल है, इसलिए सौभाग्यशाली हैं वो भक्त जो इस गौड़े संप्रदाय से जुड़े हैं, महाप्रभु के संप्रदाय से जुड़े हैं। हम सब वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, हालांकि हम कहते हैं ब्रह्म मधुआ गौड़िया संप्रदाय में कहते हैं, लेकिन वास्तव में विशेष रूप से देखा जाए, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु की अलग संप्रदाय बनाया, नहीं, चैतन्य महाप्रभु हजार संप्रदाय बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि स्वयं कृष्ण है। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने अपने आप को मध्वाचार्य के संप्रदाय से जोड़ा है कि नहीं, क्योंकि वो भक्त के रूप में थे, भक्त के रूप में वो लीलाएं कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे अपने अपने आप को। नहीं तो महाप्रभु चाहे या उनके नित्य परिकर भी चाहे जो धाम से आते हैं वो कितने भी संप्रदाय खोल सकते हैं, लेकिन खोलेंगे नहीं, वो फिर भी शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर हम लोग प्रचार करते हैं। तो एक विचित्र बात बताते हैं आपको, ठाकुर भक्तिरोध ने एक पुस्तक लिखी थी कृष्ण संहिता, ये पुस्तक याद नहीं कौन से साल में लिखी, लेकिन 1885-1886 के आसपास लिखा होगा ठाकुर भक्तिरोध। तो इस पुस्तक में भक्ति ठाकुर ने एक बहुत अच्छा रहस्य खोला है, आप सुनिए ध्यान से क्या है। बता रहे हैं कि विदेशों में पाश्चात्य दर्श में ये जो ब्रज का प्रेम है ये नहीं पहुंचा अभी तक, ठाकुर भक्तिनाथ कह रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। दिस रसा है नॉट क्रॉस बियॉन्ड इंडिया, अ शॉर्ट वाइल अगो स्कॉलर फ्रॉम इंग्लैंड नेम न्यू मैन रियलाइज समथिंग अबाउट दिस रसा एंड रोड अ बुक अबाउट इट। The people of Europe and America have not been satisfied with Vatsalya Ras mixed with opulence, as preached by Jesus Christ. I hope by the grace of the Lord, in a very short time, they will become attached to drinking the intoxicating nectar of Madhurya Ras. It has been seen that any rasa which that appears in India eventually spreads to the Western countries. Bhakti Thakur likh rahe hain 1800 something mein. To us log to kuch hua nahi tha. शिला प्रभुपाद भी जन्म नहीं लिए थे, शिला प्रभुपाद के जन्म से पहले ही सब लिख रहे हैं भक्तों ठाकुर। Therefore Madhurya Ras will soon be preached throughout the world, just as the sun rises first in India, बोलते जापान में होता नहीं है, इंडिया में होता है, जापान भी एक्चुअली फार वेस्ट है, अगर ईस्ट में कोई कंट्री है तो वह है इंडिया अकॉर्डिंग टू शास्त्र. जापान इज ऑल्सो फार वेस्ट, लेकिन ऐसे ग्लोब में देखते ऐसा लगता है जापान ईस्ट में. नहीं, बोलते जापान में सबसे पहले सनराइज होता है. नहीं, हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय होता है सबसे पहले इंडिया में, है कि नहीं? और therefore माधुरी रस विल सून बी प्रीच थ्रूआउट द वर्ल्ड. जस्ट द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया एंड ग्रेजुअली स्प्रेड्स इट्स लाइट टू द वेस्टर्न कंट्रीज. द मैस्टलेस शाइनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल ट्रूथ अपीयर्स फर्स्ट इन इंडिया एंड ग्रेजुअली स्प्रेड्स टू द वेस्टर्न कंट्रीज. After analyzing people's level of advancement, the past compilers of the scriptures have established the appropriate holy names to deliver one in the different ages. The holy names to deliver one Satyuga are as follows. अब अलग अलग युगों में अलग अलग महामंत्र की प्रधानता रही है, मंत्रों की प्रधानता रही है. और इसका अर्थ यह नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र सतयुग में नहीं था, लेकिन अधिकांश उस समय लोग थे वो शांत रस में थे, तो इसलिए जो मंत्र का उच्चारण के लिए था, जो जो उनको उच्चारण करना था, वो भी अधिक से अधिक को क्या प्रदान कर सकता था, शांत रस प्रदान कर सकता था, और थोड़ा बहुत दास्य रस भी प्रदान कर सकता था. क्या था वो मंत्र? नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा गति. ये था मंत्र जो सतयुग में जो भक्त लोग थे वो उच्चारण करते थे और वैकुंठ धाम की वो प्राप्ति करते थे. इसका क्या अर्थ है? लॉर्ड नारायण इज द गोल ऑफ ऑल साइंस लैंग्वेज एंड लिबरेशन, इज अ सुप्रीम डेस्टिनेशन. द नेम ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ मिक्स विद ऑपुलेंस इज नारायण. द सुप्रीम लॉर्ड इज फुली रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नारायण, हु इज सराउंडेड बाय हिज एसोसिएट्स इन वैकुंठ. प्योर शांत रस एंड अ लिटिल दास्य रस इज फाउंड एट दिस स्टेज. वही हमने बताया अभी. These are the holy names to deliver one in Treta Yuga. अब जो त्रेता युग में आया उसमें क्या हुआ? इसमें दास्य रस पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम प्रकट हुए और उनके भक्त प्रकट हुए, तो उनके भक्तों को दास्य रस पूर्ण रूप से प्राप्त हो, इसलिए मंत्र भी उस तरह का उनको मिला उच्चारण करने के लिए. एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सख्य रस की शुरुआत होती है केवल, यानी सख्य रस ऐश्वर्य का भाव रहता है, मर्यादा की भावना रहती है, विभीषण बाली भगवान राम के मित्र, लेकिन इनमें क्या मर्यादा भी है साथ. विभीषण राम के साथ कबड्डी नहीं खेल सकते, उनके कंधे पे नहीं चढ़ सकते, मर्यादा का पालन करना होगा मित्रता होने पर भी. इसे केवल शुरुआत, लेकिन प्रधानता किसकी है? सर्विटर मोड की, सर्विटरशिप की. और क्या था उसमें? रामा नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केश कमसारे हरे वैकुंठ वामन. ये त्रेता युग का मंत्र है. और फिर द्वापर युग आया. द्वापर युग में शांतरस, दस्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस. द्वापर युग में इसका प्रोमिनेंस था. यानी कि कहने का अर्थ है कि द्वापर युग में हालांकि भगवान ने अपने माधुरी लीलाओं को प्रकट तो किया, लेकिन उसका वितरण नहीं किया, है ना? वितरण तो इसी का ही हुआ, यानी कि इस प्रधानता नहीं रही उसकी. प्रधानता इन्हीं रसों की रही, दास्य रस, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस. और क्या था मंत्र? द्वापर युग का मंत्र था हरे मुरारे मधु कैटवारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु विराश्रय माम जगदीश रक्ष. तो ये था द्वापर का मंत्र. कलयुग का मंत्र बड़ा आसान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो ये है कलयुग का महामंत्र. ये जो कलयुग का महामंत्र है इसमें सारे रस आ जाते हैं. ये माधुर्य रस तो प्रदान करता ही है, बल्कि बाकी अन्य रसों को भी प्रदान कर सकता है. संपूर्ण आध्यात्मिक जगत इस हरे कृष्ण महामंत्र में निवास कर रहा है. यह हरे कृष्ण महामंत्र आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, जहां भी आप जाना चाहते हैं. आप जाना चाहते हैं वैकुंठ, नो प्रॉब्लम, जाइए। आप जाना चाहते हैं अयोध्या, आप जा सकते हैं। आप जाना चाहते हैं द्वारका, जा सकते हैं। आप जाना चाहते हैं मथुरा, जा सकते हैं। आप जाना चाहते हैं गोकुल वृंदावन, जा सकते हैं। इसलिए इस कारण से भी ये महामंत्र है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है कि नहीं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो महामंत्र है ये मौत माधुरी राम है, केवल मुख्य नाम नहीं है। मुख्य नाम हो गया गोपाल गोविंद, है ना, और क्या है, माधव श्याम सुंदर हरि नंद नंदन, ये तो ये सब जो है मुख्य नाम, ब्रज गोपाल गोपीनाथ हरि सुंदर मुख्य नाम, सब मुख्य नाम। लेकिन माधुर्य नाम में स्पष्ट रूप से श्रीमती राधारानी का नाम आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए बताया जो हमने कि ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है कि एक मंत्र उपासक आएगा कलयुग में और वो इस हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करेगा पूरे पृथ्वी में। शिला प्रभुपाद, तो शिला प्रभुपाद ने ये कार्य किया है, तो इसलिए प्रभुपाद ने नाम संकीर्तन पर इतना जोर दिया। हमारे आचार्य लोग नाम संकीर्तन पर इतना जोर देते हैं, और पिछली बार हमने बताया था शास्त्रों से उदाहरण देते हुए कि कैसे नाम संकीर्तन जो है हरे कृष्ण महामंत्र वो सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग माधुर्य नाम। तो एक है मुख्य नाम, एक है गौण नाम और एक माधुर्य नाम। गौण नाम परमात्मा जगदीश, है ना, परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, और क्या क्या होता है, सर्वव्यापी जगदीश, और लेकिन जैसे जगन्नाथ जी है, अब जगन्नाथ जी मुख्य नाम है या गौण नाम है, ये हमारे क्या है भाव पर डिपेंड करता है। अब केवल ये सोचा कि वो जगत के नाथ है, जगत के नाथ, बस ठीक है जगत के नाथ ही आपके लिए फिर वो लेकिन कोई जगन्नाथ जी को जब चैतन्य महापुरुष देखा तो उनको श्याम सुंदर रूप में देखा, अब समझवा दू। तो इसलिए ये यथामाम प्रबद्यन्ते ताम सते बजामे हम, एक जगन्नाथ जी की ये एक विशेष उपलब्धि है जगन्नाथ जी के नाम में। अन्यथा बाकी जितने भी नाम है गौण नाम है, परमात्मा सर्वव्यापी सर्वज्ञ ईश्वर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सच्चिदानंद भी बोलते हैं कई बार लोग, सच्चिदानंद भी बोलते हैं भक्तों के साथ जो नाम लिया जाता है, नहीं वो सब मुख्य नाम है ना? मुख्य नाम है यशोमती प्राणधन, यशोमती नंदन, सच्ची नंदन, पार्थ सारथी, तो ये सब जो है मुख्य नाम है। तो इस प्रकार इन नामों के बारे में बताया गया। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं वी शैल नॉट केयर फॉर एनी आउटसाइडर्स, इफ दे शुड डिराइड अस वी शैल नॉट स्टिल नॉट केयर फॉर देम, वी शैल सिंपली एंजॉय द ट्रांसेंडेंटल मेलो ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा एंड दस वी शैल रोल ऑन द ग्राउंड एंड डांस एक्सटैटिकली इन दिस वे वी शैल इटर्नली एंजॉय ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है, ऐसे महामंत्र का जब बड़े ध्यान से करना चाहिए। हरि नाम जब होता है हमें जाना चाहिए साथ में नाम संकीर्तन में, हाँ। गायत्री एंड महामंत्र अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे। कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण रचरण, महाप्रभु ने कहा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोला, कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र गायत्री मंत्र हमें भव सागर से छुटकारा दिलाता है, लेकिन ये कृष्ण नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है हमें गोलोक धाम वृंदावन तक ले जाता है। श्रील जी गोस्वामी बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भक्ति संदर्भ में, मंत्रोज आर एक्चुअली कंपोज ऑफ द नेम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. मंत्रोज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेम बिकॉज दे इंक्लूड वर्ड नमः एंड आर स्पेशल पावर्स दैट आर गिवन बाय द ऋषिज और लॉर्ड हिमसेल्फ. द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड However, in themselves, being independent, can bestow the highest goal of life, Krishna Prem. Names of Krishna are more suitable than mantras. In Krishna Samhita, Bhaktivinoda Thakur describes the various mantras given to liberate one in the different yugas. Jo hum log already discussed kar chuke hain. Hai na? Humne pehle discuss kar liya. To Bhaktivinoda Thakur ne is pustak mein likha hai, Krishna Samhita. In the Gaudiya conception, samsara mochan or liberation means to realize one's swarup. As this Brahma Gayatri and the Gopal mantra retire, but chanting Hare Krishna continues to deliver one onto the lotus feet of Krishna in the spiritual world. This is the final state of spiritual evolution wherein one attains his vastu siddhi and engages in Krishna's eternal service. तो ये लिबरेशन का जो हम लोग गौड़िया वैष्णव कंसेप्शन लेते हैं, मुक्ति की परिभाषा ये है कि साधक को अपने स्वरूप का पता चलता है. मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप है ना अवस्थिति ही है ना. लेकिन जब लीलाओं में प्रवेश करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से और वहां पे आपको वास्तु सिद्धि प्राप्त होती है, वहां पे भी आप एक गोपी के गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर आपकी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, 11 साल के होते हैं, 12 साल के होते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, लगभग 13 साल के होने लगते हैं. उसके बाद फिर कोई आएगा, कोई नित्य परिकर आएगा या नित्य कोई सखी आएगी, वो पूछेगी यहाँ क्या कर रहे हो आप, मैं लीलाओं को स्मरण कर रहा हूँ. वो इंतजार कर रही है या सखा के रूप में आप हैं या सखी के रूप में आप इंतजार कर रहे हो कि कब मुझे राधारानी के दर्शन होंगे. अभी तक राधारानी के दर्शन नहीं हुए, कब कृष्ण के दर्शन होंगे, अभी तक दर्शन नहीं हुए, 13 साल बीत गए. ब्रज में भी प्रकट हो गए आप, अपने स्वरूप में भी प्रकट हो गए और आपकी आयु बढ़ेगी, लेकिन एक आयु के बाद फिर आयु नहीं बढ़ेगी आपकी, फिर आप 13.5 साल 12.5 साल के या 13 साल के हैं, उससे आगे आयु बढ़ेगी नहीं, उतनी रहेगी. तो उस आयु में फिर कोई नित्य परिषद परिकर जो है, जिनके प्रति आपका विशेष आकर्षण है और जिनके आश्रम में रहकर आप भजन कर रहे हैं, ऐसे रागात्मिका वैष्णव रागात्मिका परिकर के आश्रम में रहकर हम लोग भजन करते हैं. और पूर्व राग होता है, पूर्व राग का मतलब होता है मिलने से पहले अटैचमेंट. अरे ये कैसे हो गया, मिलने से पहले अटैचमेंट हो गया, आध्यात्मिक जगत में होता है, भौतिक जगत में तो मुश्किल है, मिलने से पहले ही अटैचमेंट हो गया. यहाँ पे भी होता है लेकिन वहां विशेष रूप से होता है. रुक्मिणी जी को पहले से पूर्व राग हो गया, कृष्ण के बारे में सुन कर ही वो घायल हो गए, मूर्छित होते थे, कृष्ण के बारे में सुन के मूर्छित हो जाते नहीं कि हम ही मूर्छित हो जाते हैं महामंत्र का जप करते हैं तो बड़ी घोर निद्रा में मूर्छित होते हैं, हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, माला फिसलने लगती है ना, एक्स्टैटिक सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं हम. एक मिनट. तो इस प्रकार समय लगता है. तो इस प्रकार जब स्वरूप पूर्णता प्रकट हो जाता है, इसको कहते हैं वास्तु सिद्धि कहते हैं. और वहां पे फाइनल रिफाइनमेंट होता है जब उन लीलाओं में प्रविष्ट करके हम लोग उन नित्य परिक्रमों के माध्यम से श्रीमती राधारानी की सेवा करना शुरू करते हैं. वहां से जब वो सब धाम जाते हैं, जैसे दंत वक्र का वध करने के बाद मथुरा में कृष्ण, उसके बाद सब लोग कहां चले गए, धाम चले गए, धाम द्वारका नहीं गए. दंत वगैरह का वध करने के बाद कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर गोलोक वापस चले. तो जितने भी साधक थे वो भी साथ में गए, सबको परफेक्शन मिल गया. कौन
जो आप कह रहे
हैं, वो सब उम्र बढ़ जाती है फिर अपने आप वो हो जाता है सब, क्योंकि वो टाइम फ्रेम के अंदर सारा हो जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण देखिए यहाँ पर 125 साल लीलाएं करते हैं, 125 साल, तो तब तक तो जिन जिन को मौका देना है सबको मौका दे दिया जाता है ना। लेकिन इस प्रकार हम लोग जो है भौम वृंदावन से गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में हम लोग प्रवेश करते हैं, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उसको कहते हैं वास्तु सिद्धि। और इस देह में जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि, ठीक है। और ये सब तभी होगा जब हम लोग आज यहां बैठकर जब शुरू करेंगे, वो सिद्धियां तो बाद में प्राप्त, ये साध्य की बात है। साधन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी हम लोग साध्य की इतनी चिंता करते हैं कि साधन को ही भूल जाते हैं, ये समस्या हमारे साथ। या कई बार हम साधन की इतनी चिंता करते हैं कि साध्य को भूल जाते हैं। तो साधन और साध्य दोनों का ही विचार रखना जरूरी है। मान लो आप जा रहे हो टैक्सी में, तो आपको ड्राइवर को बताना पड़ेगा कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, एयरपोर्ट जाना मुझे। ये थोड़ा टैक्सी में बैठ गए साधन मिल गया, कहीं भी ले जाओ मुझे, मैं घूम रहा हूं बस, मैं घूम रहा हूं, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम चलाते रहो बस। वो बहुत बढ़िया हो गया उसके लिए, और मीटर चलता रहेगा, जब तक पेट्रोल है तब तक वो आपको चलाता रहेगा। लेकिन फिर साध्य की प्राप्ति कैसे होगी, आप अपना समय बर्बाद करें। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए एक समय के बाद, जैसे जैसे हमारा साल बीतता है, जैसे जैसे हमारा भजन पकता है गुरु कृपा से, वैष्णव की कृपा से, हमें स्पष्ट होने लगता है कि हम कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है कि नहीं। आप महामंत्र का जप कर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हैं आप, जिसका नाम ले रहे हो वो कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं आप, तो ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है तो बहुत मुश्किल है। फिर वो साधन भजन जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम लोग किसकी बात, किस क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं, सेवा मांगते हैं। यहां जब सेवा करेंगे तो वहां सेवा करेंगे, यही सेवा नहीं हो रही तो वहां क्या सेवा करोगे आप। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्रशिक्षण का केंद्र, प्रभुपाद कहते हैं एम्बेसडर, एम्बेसीज है हमारे, स्पिरिचुअल एम्बेसीज है। एम्बेसी में वीजा जब मिलेगा तभी तो आप अमेरिका जाओगे। आपकी अमेरिका जाने की इच्छा है लेकिन एम्बेसी से क्लियरेंस नहीं मिला तो कैसे जाओगे आप अमेरिका। और वीजा कौन देंगे, गुरु देंगे आपको। और आप एम्बेसी अगर जाते भी हैं तो सबको एक जैसा वीजा भी नहीं मिलता है, ठीक बात है कि नहीं, सबको एक जैसा वीजा मिलता है क्या, खासकर अमेरिकन एम्बेसी में तो मिलता है नहीं सबको एक जैसा। किसी को 5 साल का मिल जाता है, किसी को 1 साल का मिलता है, किसी को 1 महीने का मिलता है, कोई टूरिस्ट वीजा अप्लाई के लिए अप्लाई करता है। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं अमेरिका जाने वाले भी। तो कहने का अर्थ है कि वीजा देने वाले कौन है, एम्बेसी वाले है कि नहीं। इसी तरह से गुरु वो एम्बेसडर हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, जो हमें यहाँ पर वीजा देने के लिए आए हैं। और जो इस्कॉन के सेंटर्स हैं वो एम्बेसीज हैं, जहां रहकर हमें बड़े ध्यान से इस महामंत्र का जप करना, नहीं तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा, एप्लीकेशन आपका रद्द कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑफेंसिव चैंटिंग के कारण आपको वीजा नहीं मिलेगा। पासपोर्ट तो होगा, वीजा नहीं लेगा कुछ। वैकुंठा पासपोर्ट सबको मिल चुका है, गोलोक का पासपोर्ट सबको मिल गया, वीजा किसी का नहीं लगा उसमें। तो यहां जब सेवा करेंगे तो वहां सेवा करेंगे, यहां जब हम लोग मंदिर मार्जन करेंगे तो वहां मार्जन करेंगे। महाप्रभु ने स्वयं दिखाया, भौम लीला में दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने, जगन्नाथपुरी में स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य परिक्रमों के साथ गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि हमें यहां पर भी सेवा करनी है, और यहां सेवा करके ही वो दिखा रहे थे कि वहां सेवा करने के लिए हम योग्य बनेंगे। जिसने यहां पर वैष्णवों की सेवा नहीं की, यहां पर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वहां क्या सुनेगा वो, उसको तो घुसने भी नहीं दे जाएगा वहां पर, है कि नहीं। फिर तो कई स्वर लोग में अटक जाएंगे हम बीच में, फिर से दोबारा आना पड़ेगा, फिर से दोबारा हम लोग प्रयास करेंगे, साधना करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम परफेक्शन अगर अटेन करना चाहते हैं तो सेवा अधिकार के लिए हमें प्रार्थना करें। मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दीवार बोलते हैं ना, सेवा अधिकारक दिए कर निज दास। तो सेवा अधिकार, सेवा का अधिकार मांगते हैं हम ये नहीं बोलते लीला अधिकार दिए या धाम अधिकार दिए, नहीं, हम सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए यहां सेवा करना है, ये वो स्थान है जहां पर हम अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं या गुरु हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए, कृष्ण किस तरह से प्रसन्न होते हैं, यहीं पे आप अपने आप को प्रशिक्षित कर लो। तो गौर लीला में भी चैतन्य महापुरुष ने यही दिखाया अपने पार्षदों को, परिक्रम को, किस तरह से मुझे प्रसन्न कर सकते हैं आप, हरि नाम लेके, नाम संकीर्तन करके, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में भाग लेके, प्रसाद का वितरण करके, हरि कथा करके, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके, नवदी मंडल परिक्रमा करके, ठीक है, प्रचार करके, भजो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, यही चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को। तो ये सब इसी भौम वृंदावन में, मोहम धाम भौम मायापुर में हुआ ना, है कि नहीं, यहीं पे तो चैतन्य महापुरुष ने आगे दिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञा गुरु हो या ताराय देश, कुर्म ब्राह्मण को दक्षिण भारत में महापुरुष ने आगे दी। तो ये सब यहां पे करने के लिए कहा ना, और कहां करने के लिए कहा, फिर प्रभुपाद ने जितनी भी सेवाएं दी यहीं पर दी। तो यहां जब हम लोग सफल हो जाएंगे, यहां हम अपने आचार्यों को प्रसन्न करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों को भी अपने आप प्रसन्न करेंगे, फिर हम षट गोस्वामियों को प्रसन्न करेंगे। गोस्वामी लोग नित्य परिकर हैं, ये आपको महाप्रभु से मिलाएंगे, लेकिन उनको उनको उन तक पहुंचने के लिए हमें अपने गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बहुत गहरा संबंध है मंत्र, गुरु और इष्ट, इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। गुरु हमें मंत्र देते हैं, मंत्र जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है गुरु का, इसे बड़े ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, आदर देना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए गुरु की, नाम अपराधों से बचना चाहिए। और मंत्र में आपका स्वरूप, गुरु का स्वरूप और भगवान की लीलाओं में आपकी सेवा, सब कुछ छुपा हुआ है इस मंत्र में, ठीक है। और इसमें आपके इष्ट कौन है ये भी छुपा हुआ है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मंत्र में आपके इष्ट कौन है ये भी पता चल जाएगा। इसलिए नामों का उच्चारण बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कुछ लोग बाहर खड़े होकर जप कर रहे हैं, कुछ लोग पार्क में जप कर रहे हैं, कुछ लोग आकाश में पंछी देखते हुए जप कर रहे हैं, कुछ लोग जप ही नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग निद्रा में हैं, है ना, कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हम जप कर रहे हैं। तो इस प्रकार नाना प्रकार के जप हैं, लेकिन हमें देखना है कि जब हम जप कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। नाना प्रकार के जप हैं, वाचिक जप है, जोर से जप किया जाता है। वाचिक जप का मतलब होता है जोर से उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उपांशु जप जो हम लोग करते हैं रोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कहते हैं उपांशु जप। और मानसिक जप होता है जो मन से किया जाता है, उसमें आप बिल्कुल उच्चारण नहीं करते, जो हमारे लिए नहीं है, केवल उन्नत उच्च कोटि भाषाओं के लिए जिनको विशेष रूप से गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, यानी कि गुरु की आज्ञा के बिना हमें मानसिक जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मानसिक जप में समस्या ये है कि एक तो नींद भी जल्दी आएगी और जल्द ही भूल जाएंगे कि हम जप कर रहे थे कि नहीं, दूसरों को तो लाभ पहुंचेगा नहीं, खुद को भी नहीं पहुंचेगा, है ना। इसलिए उच्चारण करना चाहिए, साउंड वाइब्रेशन। श्री जी गोस्वामी ने लिखा है भक्ति संदर्भ में, अगर आप रूप का स्मरण नहीं कर पा रहे, लीलाओं का स्मरण नहीं कर पा रहे, श्री जी गोस्वामी ने मार्गदर्शन दिया है कि सबसे पहले हमें साउंड वाइब्रेशन सुनना चाहिए, और यही श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, है कि नहीं। श्री प्रभुपाद ने ही बोला ना कि साउंड वाइब्रेशन पे आप ध्यान लगाओ, साउंड वाइब्रेशन सुनो महामंत्र का जप करते हुए। साउंड वाइब्रेशन जो है ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। इसके कारण क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। चेतना जितनी अधिक शुद्ध होती जाएगी हम नाम को धारण कर पाएंगे और धीरे धीरे रूप का ध्यान कर पाएंगे, फिर गुणों का ध्यान कर पाएंगे, लीलाओं का ध्यान कर पाएंगे। लीलाओं में गुण भी है, गुण में रूप भी है और रूप में नाम शब्द ध्वनि भी है, साउंड वाइब्रेशन भी है। तो इस प्रकार हम लोगों नामों का उच्चारण करना चाहिए, बड़े ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक करना चाहिए। शुद्धिकरण की आवश्यकता है, हमें यह देखना है कि हम लोग अपने आप को कितना अधिक से अधिक शुद्ध कर सकें, चेतना को अधिक से अधिक शुद्ध करना होगा नाम संकीर्तन के द्वारा। और प्रारंभ में प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के सानिध्य में रहकर हरि नाम लेना चाहिए। घर पे हैं तो कम से कम प्रभुपाद जी का कैसेट चला लीजिए, तुलसी महारानी के पास बैठ कर जप करिए, गंभीरता लाइए, भजन का एक स्थान चुनिए, है ना, मंडराते मत रहिए भंवरे की तरह, भंवरा मंडराता रहता है एक फूल से दूसरे फूल में, है ना। भजन करना है तो एक स्थान चुनना पड़ेगा। जैसे हमारे जितने भी गोस्वामी लोग थे वो लोग ब्रज में भटकते थे, हालांकि अलग अलग जगह जाते थे वो भी, लेकिन जहां भी जाते थे उनका एक स्थान होता था भजन का। अगर सनातन गोस्वामी आते थे मानसी गंगा में तो वहां भजन का स्थान निर्धारित होता था उनका, या सनातन गोस्वामी गोकुल जाते थे वहां पे भी उनका एक भजन का स्थान है, आप भी देख सकते हैं आज जाके भी। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में होते थे द्वादश आदित्य टीला के पास यमुना जी के निकट, वहां उनकी भजन कुटीर, ये सब निर्धारित स्थान होते थे गोस्वामियों के, ये नहीं कि जगह बदलते रहते हो। अब सर कारण ये है कि वहीं रहकर स्थिरता आएगी, एक स्थान में आप रहेंगे तो आप आपका मन केंद्रित होगा, अनुशासित होगा आपका मन, डिसिप्लिन आएगा। योग साधना में एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई जाती है वह है आसन, आसन को जीतना, ये जो आसन में जिस आसन बैठे हैं उस आसन को जीतना। ये बताया गया है कि कोई अगर 3 घंटे एक जगह बैठ जाता है, आसन लगाता है ध्यान की मुद्रा में, तो आसन को जीत सकता हो, यानी कि उसका मन जो है वो स्थिर हो जाता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि एक जगह बैठ कर जप कर। और ये भी बताया गया ठीक 1 घंटे बाद निद्रा प्रवेश करती है, ठीक 1 घंटे बाद। अब 1 घंटे बाद अगर आप कितने भी फ्रेश हो, कितना भी आपने अच्छा रेस्ट लिया हो रात को, ठीक 1 घंटे बाद सतर्क रहिएगा, आप टेस्ट करिए, ठीक 1 घंटे बाद देखिए आप सोने की इच्छा शुरू हो जाएगी। तो सावधान रहना पड़ेगा आप। तो इस तरह से अपने आप को हम प्रशिक्षित करते हैं, अनुशासित करते हैं एक जगह स्थान चुनकर, और बार बार नाम की महिमा को सुनकर अपना संबंध ज्ञान स्थापित करते हैं हरि नाम के साथ। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? वास्तु सिद्धि देह में नहीं होती ना, हमने बताया इस देह में केवल स्वरूप सिद्धि होती। यही प्रश्न उनका कि इस शरीर में रहकर वास्तु सिद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। कि वास्तु सिद्धि का मतलब ही है कि जब आप का सूक्ष्म शरीर भी नहीं रह जाता, सूक्ष्म शरीर भी डिसॉल्व हो जाता है, आप लीलाओं में प्रवेश करते हैं, अप्राकृत देह प्राप्त होता है। नहीं, अप्राकृत का मतलब है स्पिरिचुअल फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड नहीं, वो तो अप्रकट होता है। अप्राकृत स्पिरिचुअल फॉर्म, पंखा क्यों बंद कर दिया? अच्छा यहाँ सुनाई दे रहा है कुछ। अप्राकृत स्पिरिचुअल फॉर्म टोकिए, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि फिर वो आपको भी टोकना शुरू कर दे कि इससे मुझे टोका, कल मैं इसको टोकूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं भी देखता हूँ कहीं ना कहीं तो ये भी सोएगा, तब पकड़ूंगा उसको। संबंध आपका अच्छा होना चाहिए उस भक्त से, तब तो ठीक है, नहीं तो बुरा मान जाएगा। इसका मतलब आगे जो सेवाएं हैं हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आप सेवाएं आगे करते हैं, गायत्री मंत्र आपको हेल्प करता है स्वरूप, आपके स्वरूप की पहचान कराने में, दिस इज योर स्पिरिचुअल फॉर्म। वो तो साथ में हरे कृष्ण महान तब भी ले ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन फिर जब आगे जाते हैं गोलोक में वास्तु सिद्धि के उसमें, तो तब भी हरे कृष्ण महामंत्र वहां भी चलता रहता है। नहीं, गायत्री तो करते रहते हैं, जब तक ये देह है तब तक तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। ऊपर हमने लिखवाया था, अब देखा कोटेशन भक्ति सिद्धांत महाराज का, बहुत अच्छे कोटेशन है ये पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए। प्राकृत रस शत दूषणी भक्ति सिद्धांत ठाकुर के द्वारा, हाँ उसमें 157 राइटिंग्स हैं अगेंस्ट प्राकृत सहिज्यास, जो जंप करना चाहते हैं जल्दी उनके लिए रखा है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये आपको पढ़ के सुनाते हैं। इफ द प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस ऑफ डिवोशनल सर्विसेज आर नेग्लेक्टेड देन द अवेकनिंग ऑफ भाव कैन नेवर अकर। इवन वन हु हैज अटेन्ड द रियलाइजेशन ऑफ रागानुगा भक्ति शुड नेवर गिव अप प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, आज भी हमने बड़ा अच्छा लिखा था, ये भी श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के द्वारा लिखित है, ये भी इसी पुस्तक से है। डिवाइन रसा कैन नेवर बी फैक्चुअली अटेंड मेयरली बाय टॉकिंग और स्पॉन्टेनियस डिवोशन बाय क्लेमिंग आई एम अ रागानुगा भक्त। अ बिगिनिंग स्टूडेंट हु शुड स्टिल बी फर्दर प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग द स्क्रिप्चुअल इंजेक्शन इज नेवर सेट टू बी ऑन द लेवल ऑफ परफॉर्मिंग स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस अंडर द लॉर्ड। कि कहते हैं केवल हम चर्चा कर रहे हैं जी माधुर्य रस की, इसलिए हम रागानुगा भक्त हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं नहीं, आप रागानुगा भक्त नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अभी आपका रियलाइजेशन बिल्कुल जीरो है, ये केवल थियोरेटिकल डिस्कशन से नहीं अटेंड कर पाओगे आप, आपको फैक्चुअली उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा जब आप रागानुगा साधना कर सकते हो। डिस्कशन से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इट विल थियोरेटिकल डिस्कशन। और डिस्कशन भी हम कर रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ जो हमारे जैसे हैं, है कि नहीं? आपके आंखों में काला चश्मा चढ़ा है, मेरे आंखों में काला चश्मा चढ़ा है, हम दोनों चर्चा कर रहे हैं आकाश कितना नीला है, आकाश कितना साफ है, तो फायदा क्या ऐसी चर्चा से? दोनों के आंखों में काला चश्मा चढ़ा हुआ है, आज आकाश बहुत साफ है, स्काई बहुत क्लियर है, कोई क्लाउड्स नहीं है, है ना, कितना साफ लग रहा है, दोनों की आंखें बंद है, काला है चश्मा चढ़ा हुआ है, कहने का अर्थ। सो व्हाट इज यूज ऑफ डिस्कसिंग? पॉइंट इज कि हमें वो डिस्कस करें, वही हमें लाभदायक होगा हमारे लिए डिस्कस करना जो हमारे लिए एप्लीकेबल है। मेडिसिन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, पेशेंट के उसके आयु को देखते हुए, उसके हेल्थ को देखते हुए, उसके बीमारी को देखते हुए। डायबिटिक पेशेंट को मीठा दिया जाए, उसका कड़वा लगेगा या मीठा लगेगा? डायबिटीज है किसको यहां पर? मीठा लगता ना, मीठा लगता है, इसका मतलब क्या उसको लेना चाहिए मीठा? बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे ही। तो इस प्रकार जब हम बहुत कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम डिस्कस करना चाहते हैं राधा कृष्ण के, वो मीठा जरूर लगेगा सुनने में, लेकिन हमारे लिए वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट जो है मीठा खा रहा है, बीमारी को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसको मेटेरियली ले रहा है, उसको स्पिरिचुअली नहीं ले रहा, उसको कंटेमिनेशन के कारण। जैसे आप गीत गोविंद पढ़ेंगे उसमें राधा कृष्ण की निकुंज लीलाएं पढ़ेंगे, आप उनके फिजिकल रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, बिल्कुल आपका माइंड कंटेमिनेट हो जाएगा, और थोड़ा सा भी आपने सोच लिया, मेटीरियल लस्ट भी आ गया, थोड़ा सा भी रंच मात्र भी आया, वही अपराध लग जाएगा आपको। जैसे नाम अपराध होता है ना विषयों का चिंतन करना, ऐसी लीलाओं के प्रति अपराध हो जाएगा डायरेक्ट, और उसमें अनर्थ घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ जाएंगे हमारे अनर्थ। इसलिए हमारे आचार्य लोग मना करते हैं। ये भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का एक और कोट सुनिए, हैं फोन में शास्त्र ही होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल फोन है, दिस इज फॉर कृष्णा, If you are using for Krishna, then it is spiritual. है कि नहीं? One, ये देखिए बड़ा अच्छा है। One is covered by offenses, missing the pastimes of the Lord. But this will never do away with the lust burning in the heart. By the blockage of offenses, one's eternal spiritual body will never be attained. So, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आएगा भी कि इसलिए नियोफाइट्स को, जिनका फेथ वीक है, उनके साथ कभी भी मेलोस, डिवोशनल मेलोस डिस्कस नहीं करना चाहिए. ये अगला कोट आएगा भक्ति सिद्धांत महाराज का इसी बुक से. वीक फेथ जिनका है, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ आप अगर रसास के बारे में डिस्कस करेंगे, खासकर इन कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स को डिस्कस करेंगे, वो उसको मेटेरियल ही लेंगे, अपराध लग जाएगा. इसे बहुत सावधान रहना चाहिए. हम किससे बात कर रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, वो पात्र है या नहीं है. जैसे प्लास्टिक का एक ग्लास, ये कितना पतला है देखिए, इससे भी पतले ग्लास आते हैं, प्लास्टिक इससे भी पतला आता है. उसमें अगर आप गर्म खोलता हुआ घी डाल दो ना, क्या होगा, ये फट जाएगा. ये पात्रता नहीं है, होल्ड करने की पात्रता चाहिए. तो जब हमारे अंदर पात्रता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है होल्ड करने के लिए उसको, उन लीलाओं को, तो वो उसका क्या है कि एडवर्स इफेक्ट होगा हमारे कॉन्शियसनेस में. जैसे बड़ा अच्छा बताते हैं, एक श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने बताया था, अभी वो नहीं है, अप्रकट हो गए. उन्होंने कहा इसे भक्ति प्रमोदपुरी महाराज, उनसे सुना था हमने. तो वो कहते हैं कि एक बार एक कथा चल रही थी और बाबा की दाढ़ी थी, वो कथा सुन रहे थे और वो माता जो है रो रही थी कथा के दौरान. तो कथा जब समाप्त हो गई, उन्होंने कहा क्यों रो रही थी आप? तो उन्होंने कहा कि जब जब आप कथा कर रहे थे तब तब मुझे अपने बकरी का स्मरण हो रहा था. बोले क्यों? आपकी दाढ़ी देखकर. बोले मेरी दाढ़ी देखकर? मतलब उन्होंने पूछा मेरी दाढ़ी देखकर? नहीं नहीं, हाँ दाढ़ी तो है, लेकिन वास्तव जब जब आप राधा रानी का नाम लेते, क्योंकि मैंने अपनी बकरी का नाम भी राधा रखा था, तो मुझे अपनी बकरी का स्मरण होता था. तो उसकी कॉन्शियसनेस थी और वो सोच रहे थे कि ये राधा रानी का नाम सुनकर रो रहे हैं, लेकिन वो बेचारी जो औरत थी वो अपनी बकरी का स्मरण करके रो रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कुछ ही साल पहले वो बकरी मर गई. एक राम कथा चल रही, तो प्रभुपाद ने सुनाया, राम कथा चल रही थी, राम कथा चली तो एक माता बड़ी रो रही है. कथा के बाद पूछा कि तुम क्यों रो रही थी, कथा अच्छी लगी आपको, राम कथा? वो बड़ी अच्छी लगी, हाँ, कैसे भगवान राम को कैकेयी ने वनवास लेने के लिए कहा, 14 साल वनवास लेने के लिए कहा, और किस तरह से महाराज दशरथ रो रहे थे. ये प्रसंग को सुनकर मुझे अपने लड़के की याद आ गई, बचपन में वो भी हमसे गुम हो गया था, पता नहीं कहाँ गया, अभी तक मिला नहीं, 15 साल हो गए अभी तक वापस नहीं आया. तो कहने का अर्थ है कि ये होता है इफेक्ट इसका, है ना. राम कथा सुनकर ये हालत है, तो फिर राधा कृष्ण की लीला सुनकर क्या हालत होगी, खासकर जो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए. इसलिए अब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है, अगर सुनाना भी है तो बाल लीलाएं तक सुना सकते हैं आप, बट राधा कृष्ण की लीला को पब्लिक में कभी नहीं सुनाना चाहिए, बहुत डेंजरस है ये. और गौर लीला भी सुना सकते हैं आप, जैसे विशेष रूप में बाल लीलाएं सुनाया जा सकता है. तो इस प्रकार बड़ा ध्यान रखना चाहिए. तो लीलाओं का श्रवण करना अति आवश्यक है शुद्धिकरण के लिए, इसको अर्थ प्रवृत्ति कहते हैं. पर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं अनर्थ निवृत्ति से चिंता में ज्यादा करनी चाहिए अर्थ प्रवृत्ति की. अर्थ प्रवृत्ति का मतलब है श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा, गौर कथा का श्रवण करना, इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है शुद्धिकरण के लिए. लेकिन क्या वर्जनीय है, क्या मना है हमारे लिए, वो जानना भी जरूरी है. इसलिए सर्टन चैप्टर्स को हमें अपने लिए अवॉइड करना पड़ेगा, अपने सेफ्टी के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी. एक्चुअली राधा कृष्ण प्रभुपाद ने तो कितने क्लियर लिखा, राधा कृष्ण पास्ट टाइम, कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स, दे आर ओनली फॉर लिबरेटेड सोल्स. सिंपल है, कंडीशन स्टेज में हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. निकुंज लीला अगर आप सुन लेंगे, आपको बिल्कुल 100% मटीरियल लगेगा. वो एक भी लीला सुन लेंगे, इतना मटीरियल लगेगा आपको, आप खुद ही मना कर दोगे, खुद ही किताब बंद कर दोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं, खुद ही बता दोगे आप। आप खुद ही अपने आप में जज बन सकते हो जब इन किताबों को पढ़ के देखोगे आप, जैसे कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स लिखी गई हैं, तो आप खुद ही बंद होगे, किताब खुद ही बंद कर दोगे आप। ये नेचुरल है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में। हमें स्पिरिचुअल लाइफ में निश्चित रूप से आगे बढ़ना, हम सबका गोल वही है, हम वही जाना है। ये कैसे जाना है ये हमें अपने आचार्यों से सीखना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमारे पास वैसे ही टाइम कम है, आपका प्रोसेस बड़ा लंबा है, आप तो वैदिक भक्ति कर रहे हैं, कहीं कल मर जाए तो क्या होगा। तो कल मर जाओगे तो अगले जन्म दोबारा लेना पड़ेगा साधना करने के लिए। लेकिन हम ये ना सोचे कि हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे तो जल्दी चले जाएंगे धाम, वो भी नहीं होगा, तभी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन से क्या होगा। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, खुद ही मैं बता रहा हूं आपको, जैसे शुद्ध नाम के बारे में, अब मैं खुद ही शुद्ध नाम नहीं ले रहा तो थियोरेटिकल डिस्कशन है वो, है कि नहीं। इसी तरह से ये जो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स हैं, इसका इफेक्ट जो है बड़ा ड्रास्टिक होता है और एडवर्स इफेक्ट होता है। अगर मटेरियल लस्ट अगर इस पर मैनिफेस्ट हो गया तो फिर तो ये अपराध हो जाएगा हमसे, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। हाउ कैन वी कमिट ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधा रानी, उस फॉर्म इज टोटली स्पिरिचुअल। जब उनके फॉर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा तो आप क्या डाइजेस्ट करोगे आप? अब राधा रानी के फॉर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा तो आप डाइजेस्ट कर सकते हो? आप बताइए हमें से कौन है जो डाइजेस्ट कर सकता? हाथ खड़ा करिए आप। रामानंद राय ने चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा रानी के पूरे स्वरूप का उसकी चर्चा की है, एक एक अंग के बारे में बताया है, एक एक अंग जो है उनका कैसे रस से भरा हुआ है ना। तो आप पढ़िए, आप खुद ही समझ जाएंगे भाई ये मेरे लिए है कि नहीं। कैसे डाइजेस्ट करेंगे आप? फिलॉसफी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आप, लीला क्या डाइजेस्ट करोगे आप? राधा रानी के स्वरूप के बारे में केवल व्याख्या करना ही, व्याख्या करने में ही आप उसको ही नहीं बचा पाएंगे, व्याख्या सुन व्याख्या जो की जाएगी उसी को नहीं बचा पाएंगे, तो पास्ट टाइम्स कैसे बचा पाएंगे, है कि नहीं। बहुत डेंजरस है ये। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने हालांकि राधा कृष्ण की ड्यूटी इंस्टॉल किए, लेकिन स्पेशली उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वी आर वर्शिपिंग राधा कृष्ण द मूड ऑफ लक्ष्मी नारायण। दिस वॉज एस्टैब्लिश बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, दिस वे टू वर्शिप, डीटी वर्शिप का जो है स्टैंडर्ड जो एस्टैब्लिश किया गया है प्रभुपाद से पहले उनके गुरु महाराज ने किया एस्टैब्लिश, कि हमें पांच रात्रि की विधि के द्वारा हमें राधा कृष्ण की सेवा पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण के मूड में, क्योंकि राधा कृष्ण की पूजा नहीं होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं लेक्चर में, वी डोंट वर्शिप राधा कृष्ण, वी लव राधा कृष्ण। तो लव के स्टेज में है हम क्या राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए? लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है वैदिक भक्ति के माध्यम से, लेकिन राधा कृष्ण को फिर भी क्यों रखा? ये दिखाने के लिए कि हमारा गोल राधा कृष्ण की सेवा करना है। और आचार्य दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, हमें आचार्यों की उपासना करनी चाहिए, आचार्य उपासना में हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हमेशा सेफ रहेगा। जो डिवेट करेंगे पछताएंगे, गारंटीड है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लीजिए आप। जल्दी कुछ नहीं मिलता, शॉर्टकट डिस्काउंटेड कुछ नहीं मिलेगा, डिस्काउंट कुछ नहीं है इसमें, कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। The only shortcut is the mercy of the pure devotees of the Lord. Sadhu Sangha Sarva Shastra Koye, Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoye. Shuddh Bhaktoon ki jab kripa hogi, to progress humara jaldi hoga. Jab wo dekhenge ki hum log genuine path ko humne accept kiya hai, aur process ko as it is follow kar rahe hai, then the spiritual master and the Vaishnavas, they will become pleased with us. And they will bestow mercy on us. To humara jo harinam ka jab hai, humari jo sadhana hai, wo 100% मर्सी के ऊपर डिपेंडेंट है। जब हम साधना करते हैं इस उद्देश्य से कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, और उस भाव को जागृत करना है, कृष्ण प्रेम को जगाना है, तो उसको साधना कहा जाता है। दैट इज साधना। साधना हम कर रहे हैं साध्य की प्राप्ति के लिए, बट वो साधना का प्रोसेस तो एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी मुंह के अंदर कीड़ा जा। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं श्रद्धा से लेकर जो प्रेम का जो स्टेप है वो ग्रेजुअल स्टेप है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, आप श्लोक में देख लीजिए, रूप गोस्वामी लिखा हुआ है श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस। कहीं नहीं लिखा है कि श्रद्धा आज है कोई दिक्कत नहीं, कल तुम्हें प्रेम में ले जाता हूं, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा तुम कल ही प्रेम में आ जाओगे, कहीं लिखा है शास्त्र में? कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम सोचेंगे जल्दी हम कुछ सुन लेंगे एडवांस चीजें तो हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हाँ ज्ञान बढ़ जाएगा लेकिन अहंकार भी बढ़ जाएगा। जैसे एक बार प्रभुपाद अपने रूम में बैठे थे और एक शिष्य की थैली में बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारी कमेंट्रीज थी आचार्यों की, है ना, जी गोस्वामी की, श्रीधर स्वामी की, हरिभक्त विलास, व्याकरण की किताबें। तो प्रभुपाद ने कहा ये सब क्या है? तो प्रभुपाद ने उसे बोला कि प्रभुपाद ये मैंने किताबें रखी हैं रेफरेंस के लिए पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा यू विल बी माया। तो वो समझ नहीं पाया कि प्रभुपाद आई विल माया, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। कहा कि यू विल बी माया, यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर सुपीरियर वैष्णव, यू नो मोर देन योर गुरु। यही हो रहा है क्योंकि गुरु का हम देखेंगे वो लेक्चर्स बेसिक्स दे रहे हैं, बेसिक्स पे दे रहे हैं, और हमने तो राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ ली हैं, और जब भी गुरु का क्लास होगा भागवतम क्लास होगा तो बोलेंगे तो सब बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, यही वही बातें कर रहे हैं, अनर्थों की बातें कर रहे हैं, निष्ठा की बातें कर रहे हैं, हम तो राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन चुके हैं। तो ऐसी क्लासेस में हम बैठना बंद कर देंगे, यानी कि अपराध करेंगे। गुरु को जज करने लग गए हम लोग कि आई एम मोर एडवांस देन माई स्पिरिचुअल मास्टर, है कि नहीं? इसलिए जैसे उस दिन महाराज बता रहे थे कि अगर गुरु जो है अपने छात्र को शिष्य को हाथ पकड़कर लिखवाना सिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी सीख रहे हैं। प्रभुपाद ने ये बताया है कि अगर टीचर अगर ABCD सिखा रहा है, किंग ऑफ नॉलेज में चाहिए है प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुद भी ABCD सीख रहे हैं, है कि नहीं? तो हर चीज का एक लेवल होता है और हर चीज का एक समय होता है, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? गुरु दिन रात लगे हैं ये देखने के लिए कि संस्था को कैसे आगे बढ़ा जाए, शिष्यों को कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ाएं, है ना, इस प्रचार के कार्य को आगे कैसे बढ़ाएं, आगे चलकर कौन जिम्मेदारियां लेगा, इस आंदोलन को कौन आगे बढ़ाएगा, महापुरुष के आंदोलन को कौन आगे बढ़ाएगा, उनको दिन रात ये चिंता हो रही है। और शिष्य कहते हैं नहीं हम तो ऑलरेडी लीला में प्रवेश कर चुके हैं, हम तो ऑलरेडी धाम जा चुके हैं, है ना। गुरु 24 घंटे लगे हैं दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, परेशान है वो, शिष्य ऑलरेडी लीला में प्रवेश कर गए। ये देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। तो ऐसे शिष्य धाम जाएंगे क्या, बताइए, सोच के देखिए आप। फिर ऐसे शिष्य बोलेंगे भी नहीं गुरु तो हमें धाम ही ले जाना चाहते हैं ना, हम पहले ही पहुंच गए बिना कंफर्मेशन के, किसी ने कंफर्म नहीं किया, उनको खुद ही कंफर्म कर लिया अपने आप, हम धाम पहुंच चुके हैं, हम ऑलरेडी एडवांस हो गए हैं क्योंकि हमें पढ़ने का मौका मिल गया, है कि नहीं? मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। असत संघ का मतलब यही है, असत संघ त्याग यही वैष्णव आचार। वो ऐसा संघ जो आपको अपने गुरु से दूर ले जाता है उसको असत संघ कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया ऐक्या। ऐक्या का मतलब है जो गुरु का मूड है वही मूड शिष्य का होना चाहिए, नहीं तो एडवांस नहीं कर सकता वो, इम्पॉसिबल है। आरोना कोरिए मने आशा, और कोई आशा मत करो। फिर क्या अगली लाइन में बोला है, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, श्री गुरु के चरणों में रथी जागृत हो जाएगी। या इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से भाव जागृत हो जाएगा, रति का मतलब भाव, कृष्ण प्रेम जाग जाएगा और सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। तो हमें फेथ नहीं है, जब हम लोग दूर भागते हैं और वो वो बातें डिस्कस करते हैं या वो चर्चाएं करते हैं जो गुरु हमें मना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें गुरु पे फेथ नहीं है। दैट शोज वी डोंट हैव एनी फेथ इन स्पिरिचुअल मास्टर। और स्पिरिचुअल मास्टर पर जिसका फेथ खत्म हो गया उसका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जीरो, माइनस में चल रहा है उसका। क्योंकि जो गुरु ने आपको दीक्षा दी है वही आपको परंपरा से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई तो व्यक्ति चाहिए जो हमें संप्रदाय से जोड़े, गुरु परंपरा से जोड़े। तो जो प्रमाणिक गुरु जिनसे दीक्षा प्राप्त की है उन्हीं को त्याग दिया, वी हैव बिकम सो एडवांस्ड दैट वी हैव रिजेक्टेड अवर ओन स्पिरिचुअल मास्टर बिकॉज वी हैव एंटर्ड लीला। वी आर डिस्कसिंग अबाउट राधा कृष्ण पास्ट टाइम, सो देयर नो नीड ऑफ गुरु। ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है ऐसे? तो प्रभुपाद भी तो वही कह रहे हैं जो गुरु कह रहे हैं। प्रभुपाद को अलग थोड़ा कह रहे हैं गुरु से, हमारे गुरु दिन रात प्रभुपाद की तो बातें दोहरा रहे हैं, वो उनके मुंह से प्रभुपाद के अलावा कोई बात ही नहीं निकलती। आप देख लो प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद की स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ बोलते ही नहीं वो। हम प्रभुपाद को ज्यादा जानते हैं या गुरु ज्यादा जानते हैं प्रभुपाद को? ये भी एक समस्या है आजकल शिष्य के अंदर, ये ज्यादा ज्ञान हो गया है कि हम प्रभुपाद को ज्यादा जानते हैं गुरु से। वो 40 साल से लगे हैं, वो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं? जो 40 साल भजन लग कर रहा है, सेवा कर रहा है, जब तक व्यक्ति के अंदर भजन जिसका पका नहीं होगा, क्या वो इतनी सेवा कर सकता है? केवल इसलिए कि वो दिखावा नहीं कर रहा है, इस कारण से। अभी जैसे रूप गोस्वामी ने बताया, भक्ति सिद्धांत मार्ग ने बताया कि कोई अगर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच भी जाए तो उसको रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और रूप गोस्वामी ने भी बोला है नेक्ट्रो डिवोशन में, कोई अगर एडवांस स्टेज में भी पहुंच जाए तो एक्सटर्नली ही मस्ट एक्ट लाइक अ नियोफाइट। रूप गोस्वामी ने भी बोला ये बात। हमारे जितने गोस्वामी लोग थे ब्रज में जब रह रहे थे, सब संख्या पूर्वक प्रणाम करते थे, संख्या पूर्वक जप करते थे, है ना। उन्होंने तो कभी बात दिखाया नहीं कि हम भाव में आ गए हैं, एक्सटेसी में आ गए, आ जाओ। वो तो मंदिरों की स्थापना कर रहे थे, विग्रहों की स्थापना कर रहे थे, ग्रंथों की रचना कर रहे थे, षट गोस्वामी सब कर रहे थे, महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे वो सब। महाप्रभु ने कहा था उनको जाने के लिए वृंदावन, खुद तो नहीं गए, एक भी गोस्वामी अपने आप नहीं गया वृंदावन, सारे गोस्वामियों को महाप्रभु ने भेजा है, महापुरुष के ऑर्डर से गए सब वृंदावन, है कि नहीं? हमें कौन सा ऑर्डर मिला है? हमें कैसे ऑर्डर मिला है? तो क्यों छलांग मारना चाहते हैं? हम खुद जानते हैं कि हम वृंदावन में रहने के लायक नहीं है, ये बात सच है कि नहीं? दो दिन होता है उसके बाद दिल्ली याद आता है हमें, जब वहां गर्मी लगती है हमें, हम ढूंढते हैं कूलर कहाँ है, एसी कहाँ है। निर्जल एकादशी में जब जाते हैं कितनी तलाश करते हैं हम अच्छे रूम्स की, एसी लगाया है, कूलर लगाया है, ठंडा पानी मिलेगा? क्यों? आप तो ब्रज में हो, भजन करो ना, आपको तो नाम में रुचि आ गई है, आप तो लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, आपको क्यों कूलर चाहिए? गोस्वामी तो पेड़ के नीचे रहते थे, आप ये चलो वहां से पेड़ के नीचे रहो, माधुकारी करेंगे वहां पे, अपने आप आ जाते हैं। जितने भी ऐसे तथाकथित साधक हैं वो कुछ साल के बाद अपने आप लाइन में आ जाएंगे, अपने आप, क्योंकि वो खुद ही समझ जाएंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म में नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस होगा ही नहीं। मान लो आप ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी कोच में बैठ गए और यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वाह वाह क्या फर्स्ट क्लास एसी कोच है, क्या यहाँ पर कंफर्ट्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, समय समय पर यहाँ पर लोग आते हैं हमें सर्व करने के लिए, है ना। लेकिन पता चला इंजन तो लगा ही नहीं ट्रेन से, पिछले 6 घंटे से आप ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म में ही खड़ा है कि नहीं? तो इसी तरह से हमारा डिस्कशन है, हम डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। आप बहुत बड़े एयरलाइंस में बैठे हो, किंग फिशर में, है ना, सबसे महंगा एयरलाइंस, और डिस्कस कर रहे हैं आपस में क्या एयरक्राफ्ट है, क्या सीट्स हैं इसके, है ना, कितनी बढ़िया सर्विस है यहाँ पर, हर 2 मिनट में कोई जूस लेके आ रहा है, कोई खिला रहा है, कोई पिला रहा है, और टेक ऑफ ही नहीं हुआ, ट्रैफिक इतना है कि फ्लाइट वहीं पे खड़ी, एयरपोर्ट पे खड़ी। तो फायदा क्या उस प्लेन में बैठने का. दिस इज कॉल्ड इल्यूजन. यही इल्यूजन है. तो अपने आप को इल्यूजन में ना डालें कि हम लोग एडवांस हो चुके हैं, है कि नहीं. जो हमारा स्टेज है और जो हमें भजन क्रिया दिया गया, एक्चुअली विष्णु क्या नाम उसका, रहस्य, हाँ विष्णु रहस्य है, एक ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि भजन क्रिया का जो प्रोसेस है वो गुरु के द्वारा दिया जाता है और ऐसे भजन क्रिया से अनर्थों की निवृत्ति होती है. तो भजन क्रिया हमारे लिए क्या है, गुरु से पूछना चाहिए. और गुरु ने हमें भजन क्रिया दिया हुआ है ऑलरेडी, स्पष्ट हमें साधना का रास्ता दिखाया हुआ है. और ऐसी साधना हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने हर प्रार्थना में हमें साध्य के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने शुष्क साधना सिखाया. जब राधा माधव गाने के लिए कहते हैं तो उसमें सब भगवान की लीलाओं के बारे में आता वर्णन. गुरु अष्टकम कहते हैं, गाते हैं, तो उसमें यही बताते हैं कि गुरु किस तरह से राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं. हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं तो उसमें यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कैसे निकुंज में वास मिले. ऐसा नहीं कि प्रभुपाद हमें साध्य के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, और तो पहले दिन ही दे देते हैं, एक नए भक्त को भी दे रहे हैं. लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहां तक मैंने दिया उतना ही उसको लो, बस उससे आगे मत भागो, उसके डिटेल समझ जाओ अभी, बस ये गाते रहो, बस ये श्रद्धा है. तो हमें दवाई के रूप में लेना है साधना को, दवाई के रूप में. जैसे हरिनाम को, जैसे ठाकुर भक्तिनाथ कहते हैं, एनर्जी औषधि माया नाशी बारो लागी, है कि नहीं. ये औषधि कौन लेके आए, महापुरुष लेकर आए. सही हरिनाम मंत्र लाओ तुम्हें मांगी. तो हरिनाम जो है ये औषधि के रूप में लेना चाहिए हमें. और औषधि का मतलब है संख्या पूर्वक जप करना, है कि नहीं. तो जो संख्या निर्धारित की गई है गुरु के द्वारा उसका जप करना अति आवश्यक है. साधना करना बहुत जरूरी है, डेली अध्ययन करना बहुत जरूरी है, श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है. ये सब अर्थ प्रवृत्ति है, सो कहते हैं अर्थ प्रवृत्ति. भागवत का अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए. हाँ, जो निंदा करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए. प्रचार का कार्य करना चाहिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए. इस सबसे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, स्पिरिचुअली वाकई में एडवांस होंगे, गारंटीड है. हमें फेथ होना चाहिए. प्रभुपाद ने जो पैकेज प्रोग्राम दिया है वो अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं. प्रभुपाद पे अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर क्या, किस पे श्रद्धा रखेंगे हम. प्रभुपाद नहीं होते तो आज हम यहां नहीं बैठे होते. नहीं, दुर्भाग्य की बात है, थोड़ा जानने के बाद लोग प्रभुपाद को छोड़ रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है कलयुग में, है कि नहीं. कितना बड़ा मिसफॉर्च्यून है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उन लोगों का, वेरी अनफॉर्चुनेट. बस यही कहा, यही इतना ही पर्याप्त है आज के लिए. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्तवृंद की जय. गौर प्रेमानंद.